हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष भाटिया साहब। आशुतोष जी, पठानकोट का जो ऑपरेशन था, आतंकवादी हमला जो हुआ था भारतीय एयरबेस पे, वो पूरा हो गया है, अब उसकी समीक्षा हो रही है। जहां भी मीडिया में पढ़ रहा हूं, ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि इस ऑपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम नहीं दिया गया और इसमें बहुत समय भी लगा उन आतंकवादियों को मार गिराने में। आप इसको किस तरह से देखते हैं?
देखिए, मोटे तौर पर भारत में डिफेंस के जो इस तरह के मामले होते हैं उनमें एक पुलिस और जो मिलिट्री डिवाइड है वो क्लियरली होता है। एक फीलिंग हमेशा डिफेंस के जो लोग हैं उनमें होती है कि जो पूरा एनएसजी का अमला है वो एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करता है, और चूंकि वो लोग यहाँ गुड़गांव में रहते हैं और यहाँ से आप उनको इस तरह की परिस्थितियों में आपने भेज दिया, और एक भावना पाई जाती है कि वहां पर जो आर्मी है जो कि हमेशा इस तरह के काम करती है तो उसको क्यों नहीं लगाया गया। बात ये बिल्कुल ठीक नजर आती है कि स्पेशल फोर्सेस से ज्यादा बेहतर फोर्स भारत के पास नहीं है, और स्पेशल फोर्सेस जब वहां पर मौजूद थी तो उसके बाद सवाल उठता है कि एनएसजी का इस्तेमाल क्यों किया गया। लेकिन इसके पीछे कुछ और कारण है, वो ये कि एक तो जो अर्बन सिचुएशंस हैं उनमें एनएसजी ज्यादा प्रवीण होती है, उनमें वो ज्यादा बेहतर कर पाते हैं, जहां पर कोलेट्रल डैमेज आपको मिनिमम करना होता है। आर्मी निश्चित रूप से अच्छी है, लेकिन स्पेशल फोर्सेस हो सकता है कि आतंकवादियों को जल्द खत्म भी कर देती, लेकिन एक जो निश्चित जो लक्ष्य था वो था किसी न किसी आतंकवादी को जिंदा पकड़ना। इसके लिए कोशिश भी की गई, 4 एनएसजी ऑफिसर्स का एक दल आगे भी बढ़ा और जो टेररिस्ट थे उनसे कम्युनिकेशन भी एस्टेब्लिश हुआ, लेकिन तभी एक टेररिस्ट ने ग्रेनेड फेंक दिया और उसके बाद उनको अपने कदम पीछे खींचने पड़े। इसके बाद उनको मारने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। तो ये जो टाइम लगने की बात कही जा रही है वो इसलिए थी क्योंकि एक तो कम से कम कोलेट्रल डैमेज हो, पास में वहां पर एक एम्युनिशन डंप भी था इसलिए आप हैवी वेपन्स का प्रयोग नहीं कर सकते थे, और जो दूसरी बात थी वो ये कि जीवित पकड़ लेते तो बहुत सारे तथ्य भारत के सामने होते।
मगर जो बात आप कह रहे हैं वो हो नहीं सकी, यानी कि जो डिजायर्ड आउटकम था वो हासिल नहीं हुआ, तो क्या जिस तरह से मीडिया आरोप लगा रहा है ऑपरेशन काफी खराब तरीके से अंजाम दिया गया, उसमें सच्चाई आपको नजर आती है, या ये दूसरी तरफ है कि मीडिया और दूसरे लोग असली बात को समझ नहीं पा रहे हैं?
देखिए, असल में क्या है कि ये जो आपने बात पूछी कि ऑपरेशन में लगने वाला वक्त, उसका सिर्फ अकेला ये ही रीजन नहीं था कि टेररिस्ट को जिंदा पकड़ना है, ये तो एक मुख्य रीजन था ही, और जो दूसरा लक्ष्य था वो ये कि कोलेट्रल डैमेज मिनिमाइज हो, सिविलियन लाइव्स ना खोए भारत। सवाल ये उठता है कि जब एक बार आपने उन टेररिस्ट को ट्रैप कर लिया, उनको चारों तरफ से इनसर्कल कर लिया, उसके बाद ये मैटर ऑफ आवर्स था, अब वो कितनी देर में हो ये खुद सिक्योरिटी फोर्सेस पर छोड़ देना चाहिए, और अगर आप कोई हैवी फायर करते या उस तरह के हथियार का प्रयोग करते तो कोलेट्रल डैमेज भी ज्यादा होता और आसपास जो फ्यूल डिपो वगैरह है उनमें भी आग लगने की संभावना होती। तो ये एक बात है। जो इंटरप्रिटेशन यहाँ पर हो रहा है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पुलिस और मिलिट्री डिवाइड है, ऐसा जो मिलिट्री के जो ऑफिसर्स हैं वो अमूमन इस तरह की भावना उनमें होती है कि एनएसजी अपने आप में एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, और जो दूसरी जो एक बात है वो ये कि जो देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोवल, वो भी एक आईपीएस ऑफिसर हैं, तो ये भावना भी कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में है, और वहीं से निकलकर जब ये सामने आती है तो इस तरह की प्रतिक्रिया होती है जैसी कि आप मीडिया में देख रहे हैं।
तो क्या ऑपरेशन के नाम पर राजनीति भी हो रही है सेना और गैर सैनिक लोगों के साथ?
आपने बिल्कुल ठीक कहा, असल में ये बात यहाँ पर कुछ हो रही है, और उसका एक रीजन ये भी है कि जो मीडिया में एक जिसको कह सकते हैं कि हम जो प्रगतिवादी तबका है वो ज्यादा इसकी निंदा कर रहा है, और उन्होंने तो नेपाल में जब भारत ने सफलतापूर्वक अर्थक्वेक के बाद कॉन्ट्रीब्यूट किया था उन्होंने उसकी निंदा भी की थी, उन्होंने बाहर भारत में जो ऑपरेशन नेवी ने अंजाम दिए उसके बाद भी तारीफ नहीं की थी, तो उसका एक इम्पैक्ट है जो कि निकलकर सामने आया है, और ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कि इस यही सोचते हों, और इसलिए उनको ये बात कहीं ना कहीं उनके गले नहीं उतरी कि आर्मी खड़ी रहे, बाहर आउटर पेरीफेरी में और इस पूरे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को एनएसजी अंजाम दे।
सर एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या इस ये जो अटैक हुआ उससे और सुरक्षा व्यवस्था में जो कमी देखी गई उससे भारतीय सेना ने अपने प्रतिष्ठानों को सुरक्षित करने के लिए कोई सबक सीखा है?
देखिए जबरदस्त इससे इसके बाद जबरदस्त चर्निंग हुई है पूरे सिक्योरिटी अमले में और उसके बाद सभी प्रतिष्ठानों की अभी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उत्तर भारत के जितने भी एयरफोर्स स्टेशन है वहां पर बहुत एडिशनल सिक्योरिटी है क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवादियों की कुल संख्या के बारे में अभी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि ये इतने ही थे जितने की अभी हमको नजर आ रहे हैं। 6 मारे गए हैं, 2 आर्म्ड टेररिस्ट को बाहर देखा गया है उस इलाके में जिनकी खेतों में तलाश जारी है, कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। गांव वालों ने बताया कि वो हैविली आर्म्ड थे और उन्होंने देखे और उसके बाद वो गन्ने के खेतों में चले गए। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि टेररिस्ट जो अटैक है वो यहीं तक सीमित हो, हमेशा एक इस तरह की जो चीजें होती हैं टेररिस्ट स्ट्राइक हो या मिलिट्री ऑपरेशन भी हो उसमें एक सरप्राइज एलिमेंट होता है, इसलिए उसकी सावधानी बरतते हुए पूरी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है, मुस्तैद किया गया है और आशा की जानी चाहिए कि वो अब अपने मंसूबों में सफल ना हो।
एक डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं आशुतोष जी, तो पिछले 2 हफ्ते के घटनाक्रम को देख के आपको क्या नजर आता है?
नहीं देखिए, जो लैप्स हुआ है वो निश्चित रूप से हुआ है, वो पैरामिलिट्री के लेवल पर हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अगर प्लेन सीमा में से भी अगर घुस जाएंगे आतंकवादी तो फिर क्या होगा देश का, क्योंकि प्लेन जो सीमा है जो कि उस तरह का टेरेन नहीं है जैसे कि राजस्थान बॉर्डर है या पंजाब बॉर्डर है, वहां अगर से भी अगर इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर ये बड़ी खराब बात है क्योंकि आपने देखा शक्करगढ़ के रास्ते से आतंकवादी घुसे थे और इनको किसी भी थर्मल कैमरा के अंदर कैप्चर नहीं किया गया। तो पहली बात ये कि इनकी इमेजेस नहीं मिली, दूसरी बात हमारा आंतरिक तंत्र हमको देखना होगा कि ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा हो सकता है कि आतंकवादियों ने जो नशीली दवाओं के तस्कर हैं उनके नेटवर्क का इस्तेमाल किया हो, वो उस रूप में अंदर आए हों लेकिन बाद में वो आतंकवादी निकल आए। तो ये सारी जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी करप्शन की तरफ इशारा करती हैं और उसको दूर किया जाना जरूरी है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि गृह मंत्रालय ने BSF जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसको स्पष्ट तौर पर उनके DG को आदेश दिए कि आप 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दीजिए। उसके बाद वो खुद उस बॉर्डर पे गए और कल जो BSF के DG हैं उन्होंने होम सेक्रेटरी को राजीव महर्षि को अपनी रिपोर्ट सौंप भी दी है। तो अब आगे ये चीजें पूरे तंत्र में सुधार के लिए कदम उठाएंगे।
आशुतोष भाटिया साहब, इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया।